وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. और जन्नत जो है वो करीब कर दी जाएगी मुत्तकीन के। अब जहन्नुम का ये हाल है कि वो फट रही है और वो कह रही है मजीद मेरे पास लाओ, और वो भड़क रही है और गुस्से में है। और वो जब से अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया उस वक़्त से भड़क दी जा रही है, उस वक़्त से वो जल रही है। और इस वक्त भी वाइल वी आर टॉकिंग इस वक्त भी जहन्नुम जल रही है। सोचे वो कब से उसका जलना है और कब से उसका इंतजार है कि मैं इनको निकल जाऊं। उसकी तपिश में कमी नहीं, उसके अंगारों के जलने में कमी नहीं हुई, वो जल जल के स्याह हो चुकी है। उसकी आग स्याह है, सुर्ख नहीं है, और इंतजार में है उन लोगों के आने का। इसीलिए तो कही हल में मजीद, हल में मजीद। और जन्नत का हाल क्या है? अल्लाहु अकबर। जन्नत का हाल ये है कि वो करीब कर दी जाएगी मुत्तकीन के। मुत्तकी कौन? जो अल्लाह की खातिर इस दुनिया में बच बच के चलता रहता है, गुनाहों से इसलिए बचता है कि मेरा अल्लाह नाराज ना हो। जो बचा के अपने दामन को आगे अल्लाह ताला के पास, वो मुत्तकी है। जो नेकियां इसलिए करता था कि मेरा अल्लाह राजी हो जाए, जिसमें जिसको कहते हैं खौफे खुदा था, जो परहेज करने वाला था गुनाहों से। अब जन्नत उसकी तलबगार है, इसलिए हमें वो दुआएं करनी चाहिए जो हमें जहन्नुम से बचाने वाली और जन्नत में ले जाने वाली। कि जहन्नुम भी कहे कि अल्लाह ताला इसको मुझसे दूर कर देना। और वो क्या दुआ है कि अगर हम सुबह और शाम कहते हैं अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, 3 दफा कहते हैं, तो जहन्नुम खुद उस बंदे से के लिए मांगती है अल्लाह ताला से कि इसको मेरे से अपनी पनाह में ले लेना। रब्बना आतिना भी जब हम पढ़ते हैं तो भी वकीना अजाब नारायण में हम कहते हैं। सोच होनी चाहिए कि अल्लाह ताला तू मुझे बचा लेना। जरा जो दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं उनमें दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। तो उसमें भी अज़ाबे क़ब्र से भी और अज़ाबे जहन्नम से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि वो लोग जो सूरह आले इमरान में हम पढ़ते हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि तहज्जुद के बाद उठते थे तो वो आखिरी आयात पढ़ते थे आले इमरान की, आखिरी 10-11 आयतें हैं वो, तो उनमें एक है ना, रब्बाना इन्ना का मन तुदखिल नारा फकद अखजईता वमा लिल ज़ालिमीना मिन अंसार। अल्लाह, जिसको तू जहन्नुम में दाखिल कर देना आग में, तो वो तो रुसवा हो गया, जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। तो उस दिन जहन्नुम के अजाब से बचने के लिए दुआ करनी चाहिए, और ये भी दुआ करनी चाहिए अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत, ये भी कह सकते हैं, या जन्नतुल फिरदौस भी मांग सकते हैं। आपसे सलम ने फरमाया जब मांगो जन्नतुल फिरदौस मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना सिर्फ इतना भी मांग सकते हैं नहीं, छोटी सी दुआ है, 3 दफा सुबह 3 दफा शाम को मांग लेंगे तो जन्नत खुद दुआ करेगी अल्लाह इसको मेरे अंदर दाखिल करना। तो जन्नत उस दिन सज धज के पूरी अपनी जीबो जीनत के साथ, ये भी तो कब से इंतजार कर रही थी ईमान वालों का कि मेरे अंदर दाखिल होंगे, कब से ये सजाई जा रही थी, कब से इसकी जेबो जीनत हो रही थी, और अब ये पूरी सज चुकी है, अब ये करीब कर दी जाएगी। करीब कर दी जाएगी मतलब क्या कि जो सारे मरहले गुजर गए, अपुल सिराज का भी, मीजान का भी, और जितने भी मरहले हैं किताबें भी मिल चुकी, अब डिक्लेयर हो चुका किसने जन्नत में जाना है। तो अब जब सारा हो गया तो अब जन्नत करीब लेकर आई जाएगी कि इनको चल के भी ना जाना पड़े ज्यादा दूर। अब मरहले पूरे हो गए ना, अब ये जन्नती रह गए, ठीक है, अब ये जन्नती इतना ना तरद्दुद करना पड़े कि इनको जाना है कहीं दूर, अब जन्नत तक पहुंचना है, नहीं, करीब वो खुद ले आई जाएगी इनके। सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे ये तो छोटी सी एक एग्जांपल है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए। आप देखिए जो बड़े बड़े लोग जब जहाज से उतरते हैं तो उनको टर्मिनल में जाके फिर वहां से चेकिंग करके फिर बाहर नहीं जाना होता, वो गाड़ी उनके लिए जहाज की सीढ़ी के आगे लाके खड़ी कर दी जाती है कि वहीं से उतरे और वहीं बैठ जाए, गाड़ी लाई जाएगी ना कि ये गाड़ी के पास चल के जाएंगे। तो ये तो अदना सी मिसाल दुनिया की है। तो जन्नत तो जन्नतियों के लिए ऐसे लाई जाएगी कि वो जरा उनको कोई परेशानी ना हो, कोई चलना ना हो। अब जब पता चल गया ये जन्नती हैं तो अब जन्नत आ गई उनके पास। और उजलिफत पहले कहा गया करीब लाई जाएगी, फिर गैर बाईद, ये ताकीद के लिए, दूर नहीं करीब ही। अब कोई इंतजार नहीं रह जाएगा कि अच्छा अब सारी चीजें हो गई, अब हम जैसे अब से तो इंतजार है ना कि कब वो दिन आएगा कि हम जन्नत में जाएं। अब जब सारे फैसले हो गए तो अब इंतजार खत्म, अब एक लम्हे का भी इंतजार नहीं कराया जाएगा। बल्कि जब जन्नत में एंटर हो रहे होंगे ना, सब एक साथ एंटर होंगे, जो ग्रो दरो ग्रो एंटर होना है ना, तो वो जो एक एक ग्रो होगा, जैसे जो लोग बेहिसाब बगैर हिसाब किताब के 70,000 और हर एक के पीछे 60-70,000 होंगे, तो वो एक साथ एंटर होंगे। वरना ये होता है कि हम पीछे रह गए। अब देखें कहीं पे भी आपने जाना हो तो वो लाइन लगवाते हैं, जो आगे आगे वाले हैं वो पहले चले जाते हैं। जहाज में ही बैठना हो, वो आगे वाले पहले चले गए, आप पीछे हैं, आप कहते हैं इतना लंबी लाइन है, हमें पीछे खड़े होना पड़ रहा है। तो जन्नत में जाने के लिए ऐसा नहीं कि इतनी लंबी लाइन है, वो तो पहले पहुंच गए, मैं पीछे रह गई। नहीं, साथ कदम रखेंगे, पहला और आखिरी। सुभान अल्लाह, ऐसी जन्नत की दुआएं करनी चाहिए। और ऐसी जन्नत के लिए फल यतनाफस المتنافسون, जो मेहनत करने वाले हैं वो इसके लिए मेहनत करें। हाजा मा तुआदुना लिकुल्ली अव्वाबिन हफीज, ये है जो वादा दिए गए थे। कौन, किसके साथ ये वादा था? अव्वाब और हफीज। अब जन्नतियों की सिफात आ रही है, ठीक है। पहले बताया गया कौन से थे वो लोग जो जहन्नुम में एंड अप हुए, उनमें क्या चीजें थी ऐसी, क्या खराबियां थी ऐसी कि वो जहन्नुम में एंड अप हो गए। अब बताया जा रहा है कि ये जन्नत में जाने वालों में कौन सी ऐसी खूबी थी। ये वादा है अव्वाब के साथ, यानी बता दिया गया था कि जो जो अव्वाब होगा उसके साथ जन्नत का वादा है। अव्वाब कौन होता है? रुजू करने वाला, लौटने वाला। एक एक माना इसका किया गया अल्लाह ताला की इताअत करने वाला, हर फेल में जो अल्लाह की इताअत करता है, सिर्फ नमाज रोजे के वक्त नहीं, हर जिंदगी के मौके पे अल्लाह की इताअत पे तैयार बंदा है। दूसरा कहा गया जो गुनाह हो जाए तो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। तो रुजू करना क्या होता है? बार बार जाना ना, बार बार पलटना, तो बार बार अल्लाह ताला की तरफ पलटता है। तो जब इंसान नेकी कर रहा है तो जाहिर है तब भी बार बार अल्लाह की तरफ पलटता है ना, ये नेकी का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, ये दिया ये दिया, ये उसका हुक्म मान लू, ये उसका हुक्म। तो आप बार बार पलट रहे हैं, अपने अमल के जरिए पलट रहे हैं, अब फिजिकली तो नहीं जा सकते ना। तो इसी तरह गुनाह से बच ना, अगर गुनाह हो जाता है तो फिर बार बार अल्लाह की तरफ पलटना, तौबा इस्तिगफार के जरिए, ये अल्लाह ताला तू माफ कर देना। इसको अव्वाब कहते हैं। और अव्वाब कौन है? और अव्वाब उनको भी कहा जाता है जो कि चाश्त की, या जिसको कहेंगे हमारी जुबान में तो चाश्त ही, अव्वाबीन की नमाज पढ़ते, उसको अव्वाब कहा जाता है। अब कहते हैं अव्वाबीन मगरिब के बात है, मगरिब के बात नहीं है, ये वो नमाज है जिसके बारे में मुस्लिम में रिवायत आती है, जैद बिन अरकम ने कुछ लोगों को चाश्त के वक्त नमाज पढ़ते हुए देखा तो कहा ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये नमाज इस वक्त की बजाय किसी और वक्त में पढ़ना अफजल है। उन्होंने अर्ली पढ़ ली थी, जिसको हम इशराक कहते हैं, उस वक्त पढ़ रहे थे, तो फरमाया कि ये किसी और वक्त पढ़ना अफजल है। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वाबीन की नमाज उस वक्त पढ़ी जब ऊंट के बच्चे के पैर जलने लगते हैं, और वो ऊंट का बच्चा जिसको दूध छुड़ा दिया गया है, थोड़ा जो बड़ा हो जाता है उसके पैर जलने लगते हैं, यानी इसका मतलब थोड़ा सा दिन चढ़ जाता है, जिसको 9-10 बजे का वक्त कहते हैं। तो इशराक जो होती है वो बिल्कुल अर्ली होती है, वो तो बस सनराइज के जो टाइम आपके पास लिखा होगा उसके 10 मिनट बाद आप पढ़ सकते हैं, तो उस वक्त तो जरा ठंडक ही होती है ना। लेकिन जब सूरज 9 बजे तक, 10:30 बजे तक इस तरह जरा ऊपर हो जाता है, गर्मी जरा होने लगती है, तो वो है चाश का वक्त। तो ये लोग वो हैं जो अवाबीन की नमाज पढ़ते थे, क्योंकि हदीस में आता है अवाब के सिवा कोई चाश की नमाज की हिफाजत नहीं करता। इसका मतलब अवाब की निशानी होती है कि वो ये अवाबीन की नमाज पढ़ता है, सुबहान अल्लाह। तो इसलिए बाज़ उलमा इसको कहते हैं कि ये दिन की तहज्जुद है, यानी एक तो रात की तहज्जुद होती है ना, ये दिन की तहज्जुद है, ये जो चाश की नमाज है, ये इशराक की नमाज है, कि इंसान बेशक दो नफल ही पढ़ ले, दो रकत ही पढ़ ले, लेकिन अव्वाबीन में शामिल हो जाए। तो लिकुल्ली अव्वाबिन, और हफीज हफाजत करने वाला, किस चीज़ की हिफाजत करता है? जैसे मैंने आपको बताया कि अल्लाह की हदूद की हिफाजत करना, फराइज की हिफाजत करना, फराइज में नमाजें भी आ जाती, रोजे भी आ जाते हैं, और भी जो अल्लाह ताला ने फराइज हम पे आयद किए हैं वो, उनकी हिफाजत करना, हुरमतों की हिफाजत करना, जो अल्लाह ताला ने चीजें हराम की हैं उनकी हिफाजत करना, कि वाकई उनको उनसे बचा जाए। फिर इसी तरह अपने औकात की हिफाजत करना, अपनी जिंदगी के जो वक्त है इसकी हिफाजत करना, कि वो उस वक्त को जाया ना किया जाए। अल्लाह ताला के साथ जो हमने अहद कर लिया वह कलमा पढ़ के, इस कलमे की हिफाजत करना, या बंदों के साथ जो अहद किए उनकी हिफाजत करना, शर्मगाह की हिफाजत करना, जुबान की हिफाजत करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दो चीजों की जमानत मुझे दे दोगे, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ, वो क्या है? जुबान और शर्मगाह। तो ये वो लोग हैं जो हिफाजत करते हैं सब चीजों की हिफाजत। अल्लाहु अकबर। मन खशी और रहमान बिल गईब, जो रहमान से बिन देखे डरते हैं। अच्छा, एक हिफाजत के अंदर मैं आपको एक हदीस भी बयान कर देती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। तो क्या अल्लाह की हिफाजत करने का मतलब क्या है? यानी अल्लाह ताला की इताअत वाले काम करो, अल्लाह ताला की सेट की हुई बाउंड्रीज को क्रॉस ना करो। तो और अब क्या है, जो खशी और रहमान बिल गईब, ये तो पहले भी आया हुआ ना सूरह रहमान में भी यही बात आप पढ़ते हैं, और पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये कैसे लोग हैं? ये भी उनकी एक सिफत है जो जन्नत में जाने वाले हैं। वो अल्लाह ताला से डरते हैं जबकि उन्होंने अल्लाह ताला को देखा नहीं है, गैब में है अल्लाह ताला, गैब में होते हुए यानी बिन देखे उससे डरते हैं। ये अब अल्लाह ताला को हमने देखा नहीं, मगर हमारे अंदर इतनी उसकी खशियत होनी चाहिए कि हम फिर भी गुनाहों से बचें। वो यहाँ पे खड़ा नहीं है कोई हमें नजर आ रहा, कोई हमारे सर पे डंडा लेके नहीं खड़ा होगा, फिर भी हम डरे। और खशियत कैसा डर होता है? वो डर नहीं होता जैसे आप किसी शेर से डरते हैं, किसी डाकू से डरते हैं, किसी सांप से डरते हैं, ऐसा वाला डर नहीं। खशियत वो डर होता है जो इल्म के साथ होता है, यानी आप अल्लाह ताला को पहचानते हैं वो कौन सी जात है, वो कैसा रब है, फिर उसका डर होना उस अजीम जात कि मैं नाफरमानी करूं, ये डर, इसको खशियत कहते हैं। यानी देखिए ना, आप बहुत दफा किसी से इतनी मोहब्बत करते हैं और किसी की इतनी ताजीम करते हैं, वो आपका इतना महबूब है, जब कोई बहुत महबूब होता है ना, जान से ज्यादा महबूब होता है ना कोई, तो फिर हर वक्त इंसान को एक धड़का सा अंदर लगा रहता है, वो जो एक डर होता है ना अंदर, भाई कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए, कोई कहीं ऐसा ना हो मुझसे मुंह मोड़ ले, मेरी तो जान ही निकल जाएगी अगर वो मुझसे नाराज हो गया। ये जो है ना, ये होती है खशियत, ये समझना किसी को, उसकी पहचान होना, उसको जानना, और उसके बाद जो डर होता है कि अब उससे इतनी मोहब्बत हो गई है और अब वो मेरी जान से भी ज्यादा है मुझे, कि हाय जरा मुझसे कुछ ऐसा कदम ना उठाया जाए, अरे कोई ऐसी हरकत ना हो जाए, अरे कोई ऐसा बोल मुंह से ना निकल जाए कि वो मेरा महबूब मुझसे नाराज हो जाए, ये डर। और ये तभी आ सकता है जब आप उसको पहचानते हो, ऐसे तो नहीं आ सकता। पहचान नहीं है तो मोहब्बत ही नहीं, मोहब्बत हो नहीं सकती जब तक जानते ही ना हो। अब आप वो कहें फलान जगह पे एक बैठा हुआ उसे मोहब्बत शुरू कर दे, ऑटोमेटिक थोड़ी है, क्योंकि स्विच ऑन किया तो आपकी मोहब्बत शुरू हो जाएगी। जितना जानेंगे उतनी मोहब्बत होगी और उतना ही डर भी आएगा, और ये वाला डर आएगा। वो वाला नहीं डर के वो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो तो एक बच्चों वाला डर होता है कि अच्छा वो अजाब मिलेगा, अच्छा ऐसे हो जाएगा। भी ये एक बच्चों वाला डर है, ये भी एक आम लोगों का डर है, ये भी एक डर ही होता है, लेकिन चलो बुरा इस बुराई इसमें नहीं है। लेकिन ये एक होती है खशियत जो पहचान के बाद आती है, तो वो हशी और रहमान, वो जानती है रहमान को। पहले आपको ये बात पता चली कि जो जन्नती हैं वो पहचानती हैं कि वो रब कौन है, ऐसे नहीं है कि वो पता ही नहीं है, वो उसके बारे में इल्म रखते हैं, उसकी मार्फत है उनको। फिर उसके बाद ये डर उनके अंदर आया, और ये डर एक तो वो है डर, वो भी होना जरूरी है। आजकल तो उस डर से भी हम खाली हो गए कि मजलिस में भी डर जाए, आजकल तो मजलिसों में भी नहीं डरते। इतनी गलत हरकतें जो अल्लाह की नाफरमानी की हैं, जो गुनाह की हैं, उसमें शर्म ही नहीं है। मजलिस में भी लोगों के सामने भी वही कर रहे होते हैं, तो उस वक्त भी डरते रहना है। ये आप लोगों में बैठे हैं, दोस्तों में बैठे हैं, घर वालों में बैठे, उस वक्त भी कहना कि अल्लाह तेरी नापसंदी की कोई चीज ना मेरे से हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना, इस बात से डरते रहना। और अगर ये नहीं है ना, तो इसका मतलब है खशियत नहीं है। और यहाँ पे खास तौर पे बिल गैब क्यों? इसलिए कि गैब में तो इंसान अपने आप को बिल्कुल समझता है कि अब मुझे खुली छुट्टी मिल गई, अब मैं कुछ गंदी सीन्स देखूं तो भी कौन मुझे देख रहा, अब मैं कोई गंदी बात करूं, बेहयाई करूं, किसी के साथ फ्लर्ट करूं, किसी के साथ नाजायज ताल्लुक रख लूं, कौन पता चलेगा? किसी को तो नहीं पता चलना मेरे फोन पे क्या चल रहा है, मैं किससे बात कर रही हूँ, या कोई आदमी है तो वो किस किस जगहों पे जा रहा है, कोई यहाँ पे मुझे जानता नहीं, मैं नए एरिया में हूँ, किसी को पहचान ही नहीं है, मुल्क दूसरा है, कौन जाके बताएगा कौन यहाँ पे आ रहा है, किसको पता चलेगा? ये है जब हमारे अंदर खशियत नहीं होती। लेकिन ये बंदा जो जन्नती है ना, गैब में भी डरता है। देखो उसको लोगों का नहीं है परवाह कि लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, उसको ये है कि मेरा रब देख रहा है। अशी रहमान बिल्कुल बहुत बड़ी सिफत है, और इतनी अल्लाह ताला के यहाँ इसकी कदरदानी है कि ये ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे। वमन खाफ मकाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला के आगे खड़े होने से डरे, दुनिया में डरते थे कैसे खड़ा होऊंगा, क्या दिखाऊंगा उसको। तो ये ईमान की अलामत है, ये इंसान अल्लाह से बिन देखे डरे, यानी गैब में है वो रब, और फिर भी उसको उसका डर हो। तो अपनी तन्हाइयों का जायजा ले, खास तौर पे तन्हाइयों में हम क्या करते हैं, अकेले जब होते हैं क्या करते हैं, या जिस वक्त हम किसी ऐसे मुल्क ऐसी जगह पे होते हैं जहां पे हमें कोई नहीं जानता, वहां पे क्या करते हैं? वो भी एक तन्हाई हो गई ना, स्ट्रेंजर्स के अंदर होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? ये सब जायजा लेने की जरूरत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी कयामत के दिन आएगा जिसके पास इतनी नेकी होगी कि तहामा पहाड़ों के बराबर, इतने बड़े पहाड़ के बराबर, लेकिन वो नेकी उसकी, अरे लोग देखेंगे सोचेंगे इतनी नेकी लेकर आया, इतने बड़े माउंटेन ऑफ नेकी होगा, इतना इतनी ज्यादा नेकी होंगी, लेकिन उसकी नेकियां गुबार बना के उड़ा दी जाएंगी। क्यों? सहाबा बड़े परेशान हुए कि क्या वजह थी, इसलिए कि वो तन्हाई में वो काम करता था कि शैतान भी शर्मा जाए। तन्हाइयां इंसान की, यानी जब नहीं कोई देख रहा होता उस वक्त, एक मोमिन का तो रवैया ये होता है कि उस वक्त भी उसको अल्लाह की नजरों का एहसास होता है। जिसको अल्लाह की नजरों का एहसास तब है ही नहीं, तो वो तो लोगों से डरता है, क्या ईमान है फिर अल्लाह ताला पे? इसको तो अल्लाह ताला की पहचान ही नहीं है कि मुझे वो यहाँ पे भी देख रहा है, मैं छुप के बैठ रहा हूँ, रात के अंधेरे हैं, पर्दे भी डाले हुए हैं, दरवाजा भी लॉक कर लिया है। अब वो पता नहीं, जिन लोगों को अल्लाह ताला के अर्श का साया मिलेगा, उनमें एक वो भी है ना जिसको कि कोई औरत, हसीन औरत, मालदार, बड़ी अच्छी, वो औरत उसको गुनाह की दावत देती है, दुनिया में उसको बड़ा शायद समझा जाता हो, उसको बहुत बहुत हसीना है, आलम है, वो उसको गुनाह की दावत दे रही है, और वो अल्लाह के डर की वजह से उसकी तरफ नहीं जाता। सुभान अल्लाह। तो ये गुनाह की दावत देना अकेले में भी हो सकता, लेकिन उसको किस चीज ने रोका? क्या चीज है कि जो अर्श का साये पाने का वो मुस्तहिक हुआ कि उसने अल्लाह के डर की वजह से इतनी एक अपॉर्चुनिटी उसके सामने आई और उसने इससे मुंह मोड़ लिया। इसी तरह जब ये लास्ट टाइम हमने बात की थी कि इंसान अगर गुनाह का इरादा करता है और फिर अल्लाह के डर की वजह से उसको छोड़ देता, ये नहीं कि वो गया था चोरी करने के लिए लेकिन आगे पुलिस खड़ी हुई थी इसलिए वापस आ गया, तो अब उसके लिए एक नेकी लिखी जाएगी, ऐसे नहीं नहीं लिखी जाएगी। नेकी पता है किस वजह से? कि जब वो गुनाह का इरादा उसने किया मैं ये करूंगा, लेकिन फिर उसको ख्याल आ गया कि नहीं ये नहीं, मेरे अल्लाह ताला की नाराजगी है इसमें, आपने छोड़ दिया, आपको दिल किया मैं गइबत करूं, मैं इसकी बताती हूँ जरा अभी जाके बातें। अब उसके बाद किस चीज ने आपको रोका? दिल में बड़ी दफा ख्याल आया कि मैं बात कर देती हूँ, मैं ये कह देती हूँ, लेकिन क्या चीज आपको उस वक्त रोके हुए? अल्लाह का डर। उस चीज ने आपको मना किए रखा, तो अब एक नेकी लिखी जाएगी। बजाई तो अल्लाह के डर की वजह से जो गुनाह को छोड़ता है, ये नहीं कि उसके असबाब नहीं उसको मिले, मौका नहीं मिला, मिसाल के तौर मौका ही नहीं मिला, आपने तो पूरा इरादा किया हुआ था, मौका ही नहीं मिला इसलिए ये गुनाह कर ही नहीं सके, तब नहीं लेकी लिखी जा रही। तो ये भी सही कर ले। तो जो अल्लाह का डर है ना, ये दिल के अंदर होता है, ये दिखाने से नहीं, हाय हम अल्लाह से बहुत डरते हैं, हम अल्लाह तला से बहुत डरते हैं, इससे नहीं। डर दिल के अंदर होता है, डर इंसान का पता चलता है उस पे जब इंसान एक्शन करते हुए अल्लाह के डर की वजह से रुक जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी दुआ हमें सिखाई है, और इब्ने उमर फरमाते हैं कि कम ही ऐसा होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजलिस से अपने सहाबा के लिए दुआ किए बगैर उठते हैं, हमेशा अपने यानी सहाबा के लिए ये दुआ जरूर करते थे, अल्लाहुम अक्सिम लना मिन खशियतिक मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिक। ये वाली मसनून दुआओं में लंबी दुआ है, लेकिन इसका पहला हिस्सा स्टार्ट इसका ये है कि अल्लाह ऐसी खशियत दे दे, ऐसा डर दे दे जो मेरे और तेरी नाफरमानी के दरमियान हायल हो जाए, यानी ऐसा डर हो जाए कि नाफरमानी कर ही ना सकूं। क्या तो ये वो बंदा है जो अल्लाह ताला से बिन देखे डरता था। एक माना इसका है यानी अल्लाह ताला सामने नहीं था तो तब डरता था, और एक माना इसका है कि गैब में डरता था यानी तन्हाइयों में डरता था। गायबाना तौर पे डरता था। वजा अब कल्ब मुनीब, और वो आया कल्ब मुनीब के साथ। बाज़ उलमा कहते हैं कल्ब मुनीब से मतलब वही है कल्ब सलीम, सलामत दिल लेके अल्लाह ताला के पास आ गया, ऐसा दिल जो साफ दिल है, जिसमें अल्लाह की तौहीद है, जो दिल अल्लाह की इताअत के लिए राजी है। और बाकी कहते हैं कि मुनीब इनाबत से है ना, इनाबत का मतलब ही होता है बार बार रुजू करना, तो फिर इनाबत में और अवाब में क्या फर्क रहा? असल में मुनीब वो है जो अल्लाह की हया की वजह से अल्लाह की तरफ जाता है, और अवाब वो है जो अल्लाह की ताजीम में, उसके जलाल की ताजीम, वो अल्लाह कितना बड़ा है बार बार उसकी तरफ आता है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा फर्क है। तो इनाबत नऊब से है, तो अल्लाह की इताअत के लिए राजी है जो दिल, जो खालिस दिल है, जो अल्लाह ताला के आगे आजी करने वाला है, जो हया करता है उससे कि मेरा रब है ये, तो इस वजह से गुनाहों से बचता है, अपनी ख्वाहिशात को दबा देगा लेकिन गुनाह की तरफ नहीं जाता, ऐसा दिल। तो उदखुलूहा बिसलाम, दाखिल हो जाओ हा इसमें, किसमें? जन्नत में, सलामती के साथ, यानी आप तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए कि आए कोई परेशानी हो, अल्लाह पता नहीं अब यहाँ से निकाल ही ना दे, अल्लाह पता नहीं मूव ही ना करना पड़े यहाँ से। देखो दुनिया में हम कितनी ही जगह से, पांच दफा नहीं भी चाहते होते वहां से जाना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, दूसरे मकाम पे जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ से कोई मूविंग नहीं है, कोई निकालेगा नहीं, कोई डिपोर्ट नहीं कर रहा, वीजा खत्म नहीं होना यहाँ का, जन्नत में सिर्फ एंट्री है, एग्जिट है ही नहीं। सुभान अल्लाह, एग्जिट है ही नहीं, जहां का एग्जिट ही नहीं है, बाहर जाने का नहीं है कोई दरवाजा, सिर्फ अंदर आने का, सुभान अल्लाह। तो भी सलाम, सलाम के साथ, और ये साथ सलाम के मतलब एक और भी है, दूसरा माना ये है कि फरिश्तों की तरफ से भी सलाम होगा, तो सलाम के साथ तुम एंटर हो, हर दरवाजे से फरिश्ते आ रहे हैं सलाम कर रहे हैं, एंटर हो तुम सलाम के साथ, और अल्लाह ताला की तरफ से भी सलाम रहीम, अल्लाह ताला भी सलाम करेगा। ज़ालिका यौमुल खुलूद, ये है हमेशगी का दिन, ये दिन हमेशगी का, यानी अब कभी यहां से निकलना नहीं, हमेशा यहीं रहोगे। अल्लाह अकबर, तो जन्नती फिर कहेंगे ना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न। देखिए जो जिसको दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत हो, तो शुक्र करने की आदत हो, तो वहां पे भी जाके शुक्र करेगा, शुक्र है उस रब का जिसने हमसे ये परेशानी दूर की, क़यामत के दिन की परेशानी इतनी हौलनाक की, अब यहाँ पे आके चैन आएगा ना उनको, कहेंगे शुक्र है वो जहन्नुम पे से भी गुजर के आए, उनको पता चला जहन्नुम भी थी उसमें भी गिर सकते थे, तो शुक्र है अल्लाह ताला ने हमसे ये परेशानी ये गम दूर किया। और जन्नत किस चीज से बनी हुई है, देखें जिसकी महल भी एक ईंट सोने और एक ईंट चांदी की है, उसकी कंकरियां भी मोती हैं, ऐसी जगह से कौन निकलना चाहेगा। और लहुम्मा यशाउ नफीहा वलदैना मजीद, और उनके लिए हर वो चीज होगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे, जो चाहत होगी उनकी। और हम जानते हैं कि जन्नती वहां बैठे होंगे, और जिस परिंदे को खाने का जी चाहेगा वो भुना हुआ सामने मौजूद होगा, सिर्फ जी चाहेगा उड़ता हुआ परिंदा देखेंगे। और हदीस में आता है अगर जन्नती औलाद चाहेगा, मसलन है कोई दुनिया में हो सकता है किसी को औलाद ना मिली हो, तो वो चाहेगा मुझे औलाद हो जाए, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी, तो एक ही साथ में हमल ठहरेगा, बच्चा और बच्चे की जवानी भी हो जाएगी, सुभान अल्लाह। तो फौरन बच्चा मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं, कोई हमल की मुशक्कत नहीं, कोई बोझ उठाना नहीं, कोई जन्म देने की तकलीफ नहीं, तो वहां पे कोई ऐसे नहीं महरूम नहीं रह जाएगा, यानी हर ख्वाहिश पूरी होगी। और लहुम्मा यशाउना फीहा इसलिए बता दिया गया, कुछ तो चीजें देखें जन्नत की बताई गई ना, और कुछ ऐसी बात बता दी गई जो चाहोगे, क्यों, इसलिए कि देखें आज हमारी जो ख्वाहिशात हैं, वे भी 5,000 साल पहले जो इंसान था उसकी वो ख्वाहिशात ना, आज की हमारी ख्वाहिश कोई हो, शायद कि हमारे पास जहाज हो, उसकी ख्वाहिश हो मुझे, मेरे पास घोड़े हो, हमारा घोड़ों से कोई लेना देना ही नहीं, हमें तो घोड़ों की ख्वाहिश नहीं होती, ऊंटों की ख्वाहिश नहीं होती, खेती बाड़ी करने की, जैसे वो साहबी आए थे उन्होंने पूछा था या रसूल अल्लाह वहां पे खेती बाड़ी होगी, तो मुझे मतलब खेती बाड़ी का बड़ा शौक है, अब हमसे पूछा जाए हमें तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, हम तो कभी भी ना खेत जाएंगे। तो सर्टन चीजों के लिए तो बता दिया गया जो चाहेंगे वहां, इसलिए कि हर जमाने के लोगों की चाहतें पता नहीं क्या हो, मेरे जो खाने हैं वो शायद 5,000 साल पहले के लोगों के तो वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, उनकी ख्वाहिशात कुछ और होंगी, तो इसलिए कोई इंसान ये ना कहे कि ओहो ये चीज तो मुझे पसंद नहीं है तो वो तो ये मांगेंगे तो हम क्या मांगेंगे फिर हमारा क्या, नहीं, जो तुम चाहोगे, जो तुम्हारी मर्जी, और आज से 1,000 साल बाद के इंसान की क्या ख्वाहिशात होती है हमें नहीं पता, तो ये रहमान की तरफ से मेहमान नवाजी होगी, और जो रहमान है। अच्छा एक बात और देखें, मैं पीछे बताना भूल गई, जो ये वमन खशिया रहमान, हालांकि वो रहमान है फिर भी वो उसे डरते हैं, हालांकि उनको पता है वो रहमान है फिर भी डर होना, ये नहीं कि वो तो रहमान, अच्छा हम हमारा क्या असलूब होता है, क्या तरीका होता है, वो तो जी रहमान और रहीम है, डरने की क्या बात है फिर, तो हमें क्या जरूरत है कि हम डरे, वो रहमान और देखें रहमान से इस वजह से ही तो डरना है कि वो इतना मेहरबान, ऐसा रब, कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, ठीक है, तो वो हालांकि वो रहमान है फिर भी वो उससे डरते हैं। और इससे यहाँ पे ये खशी अल्लाह नहीं कहा गया, खशी रहमान ला के ये बता दिया गया, उनको पहचान है भी कि वो बहुत रहमान रहम करने वाला है, तब भी वो जिंदगी कैसे डर डर के गुजारते हैं, ना डर नहीं हो जाते ये कह के कि वो तो रहमान है तो हम अब जो मर्जी करें, तो ये जन्नत है लहुम यशाउन फीहा, ये जन्नत है जो ख्वाहिशात के पूरे होने की जगह है, परफेक्ट प्लेस। दुनिया में कहीं परफेक्शन नहीं, और दुनिया ख्वाहिशात की पूरे होने की जगह नहीं है। यहाँ पे हर इंसान को कोई ना कोई चीज होगी जो उसकी हसरत होगी, काश ऐसे हो जाए। किसी को औलाद की है, किसी को रिस्क की है, किसी को कोई और सक्सेस की है, किसी को बहुत सारे मालो दौलत की है, किसी की कोई ख्वाहिश है, किसी को यह है कि मेरे बच्चे खुश रहें, मेरे बच्चों की आगे जिंदगियां सवर जाएं, किसी को सेहत की है। तो हर एक की अपनी अपनी ख्वाहिशात हैं जो कि यहाँ पे बहुत दफा अधूरी रह जाती हैं, और बाज दफा तो सारी जिंदगी भी इंसान कोशिश करता है लेकिन वो नहीं पूरी हो पाती। बाज लोगों की ख्वाहिश ये है कि फलां के साथ मैं जिंदगी गुजारती, लेकिन वो दुनिया से चले गए, जुदाई हो गई। तब ख्वाहिश थी लेकिन ख्वाहिश वहीं रह गई। और बहुत सारे लोगों की इतनी ख्वाहिशात हैं जो अंदर ही अंदर उनकी ख्वाहिशात के दम घुट जाते हैं, अब वो कभी पूरी हो ही नहीं पाती। तो अब ये समझ लेना चाहिए कि ये दुनिया वो जगह नहीं जिसके लिए अल्लाह ताला का वादा हो, ला हु मा यशाउन फीहा। ये दुनिया के लिए वादा नहीं है, ये जन्नत के लिए वादा है। तो अपनी ख्वाहिशात को उठा के रखें कि वहां पे सब ख्वाहिशात पूरी होंगी। ये हसरतें यहाँ पे करने की और हर वक्त इन्हीं हसरतों में रहने की और हर वक्त रोते रहने की, यार ये नहीं ख्वाहिश पूरी, मेरी तो ये बड़ी हसरत थी, मेरी तो ये बड़ी तमन्ना थी, मेरी तो ये ख्वाहिश खत्म, मेरी तो अल्लाह ने ये नहीं दुआ पूरी करी, वो जगह है जहां पे हर ख्वाहिश पूरी होनी है। तो यहाँ पे ये रोना धोना बंद कर दें। किसने कहा कि यहाँ पे सब ख्वाहिशात पूरी होंगी? हाँ, मगर वहां पे हर एक ख्वाहिश पूरी होगी। आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, दिल में सिर्फ ख्याल आया और ख्वाहिश पूरी हो गई। और उनके लिए मजीद भी है, और वो मजीद क्या है, ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, लिल्लदीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, वो ज्यादा वो है अल्लाह ताला का दीदार, कि जिस वक्त जन्नतियों को हर नेमत मिल जाएगी जन्नत में, तो उसके बाद अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि अब तुम राजी हो, तुम्हें कुछ और चाहिए? वो कहेंगे अल्लाह ताला, ये अल्लाह हमें सब कुछ मिल गया, तूने तो हमें उस से निजात दे के, जो सारी मुश्किल थी उससे निजात दे के ये सारी नेमतें हमें दे दी, अब हमें और क्या चाहिए? तो अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएगा, और ये है जो मजीद है। ये डिजर्व तो कुछ भी नहीं इनमें से करते थे, लेकिन ये इन नेमतों के भी ऑन टॉप ऑफ इट है, और ये वो नेमत होगी अल्लाह ताला के दीदार की, कि जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो कितनी बड़ी नेमत होगी। क्योंकि उसके बाद इंसान को हर नेमत छोटी लगेगी, कोई नेमत उसका मुकाबला नहीं कर सकती होगी, और इंसान का जी नहीं भरेगा अल्लाह ताला को देखकर। اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، يا الله हम तुझसे सवाल करते हैं तेरे चेहरे के दीदार की लज्जत का, कि वो लज्जत कैसी होगी, हर नेमत उसके सामने छोटी है। तो हम फिर क्यों अपने दिल छोटे करते हैं दुनिया की छोटी छोटी चीजों के पीछे, सारी जिंदगी बस गम ही मनाते रहते हैं, हसरत में पड़े रहते हैं, अफसोस करते रहते हैं, ये नहीं मिला मुझे, ऐसे नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरी जिंदगी में गम आए, ये हुआ वो हुआ, क्यों? कितनी बड़ी नेमतें अल्लाह ताला ने तैयार कर रखी हैं। अगर इंसान इस क्राइटेरिया पे उतर के और जन्नत में दाखिल हो गया, तो बस फिर तो हमेशा की नेमतें, कोई हसरत बाकी रह नहीं जाएगी। बल्कि वो इंसान जिसने सारी जिंदगी एक लम्हा भी चैन का ना काटा, और हम में से कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं उनमें से नहीं, जिसने सारी जिंदगी कुछ सुख देखा ही नहीं, उसको सिर्फ एक गोता, एक डुबकी, समझ ले एक चक्कर लगवाया जाएगा जन्नत का, अभी ठहरा नहीं है वहां पे, एक सिर्फ चक्कर लगवाया गया, एक डुबकी देके जैसे चीज निकाल लेते हैं ना, सिर्फ इतनी देर के लिए उसको जन्नत में एंटर किया गया, निकाला गया। हाँ भाई बताओ, आप कोई गम देखा तुमने? कहेगा मुझे तो गम का पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं गम होता क्या है, हम क्या चीज है, मैंने तो कभी गम देखा ही, इतना ये छोटा और बेमानी लगेगा। हम इसमें हलकान हो कि अपना प्रेशियस टाइम इस जिंदगी का बर्बाद कर देते हैं और उन चीजों के लिए नहीं लगाते जो हमें यहां तक पहुंचा दे, हमेशा की खुशियों तक, हमेशा की नेमतों तक, और उस गम को मनाते रहते हैं जो जल्द खत्म हो जाएगा। जब हम वहां पहुंचेंगे तो ये गम तो रहना ही नहीं। तो उनके लिए वहां पे मस्जिद भी है। और फिर अनस रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं हर जुमे के दिन उनको अल्लाह का दीदार करवाया जाएगा। सुबहान अल्लाह, ये मस्जिद है, जुमे को दीदार हुआ करेगा। जुमे का दिन कितना प्यारा दिन है ना, जब मस्जिद मिलेगा। जन्नत की नियमतों में सारा होते हैं, कुछ 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 नसीब ऐसे भी होंगे जिनको सुबह और शाम अल्लाह ताला अपना दीदार कराएगा, बाकी जो आम होंगे उनको जुमे के दिन कराया जाएगा। तो ये दुनिया में भी बड़ा मुबारक दिन है और जन्नत में भी बड़ा मुबारक दिन है। और मुसनद शाफई में जिब्राइल में ये बात हदीस है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सफेद आईना लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, जिसके बीचों बीच एक नुक्ता था, एक डॉट था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या, फरमाया ये जुमे का दिन है जो खास आपको और आपकी उम्मत को बतौर फजीलत के दिया गया है। सब लोग इसमें आपके पीछे हैं, यहूदी भी और नसारा है, और आपके लिए इसमें बहुत कुछ खैर व बरकत है, और इसमें ये घड़ी है जिसमें अल्लाह ताला से जो मांगा जाता है मिल जाता है। और हमारे यहाँ, यानी उन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि हमारे यहाँ इसका नाम यौमुल मजीद है। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपके रब ने जन्नतुल फिरदौस में एक कुशादा मैदान बनाया है। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतुल फिरदौस, एक कुशादा मैदान बनाया जिसमें मुश्क के टीले हैं, लेकिन वो मिट्टी के नहीं है, मुश्क के हैं। मुश्क एक खुशबू होती है। जुमा के दिन अल्लाह ताला जिन जिन फरिश्तों को चाहे उतारता है, इसके इर्द गिर्द नूरी मिंबर होते हैं जिन पे अंबिया अलैहिस्सलाम बैठते हैं। ये मिंबर सोने के हैं जिस पर जुड़ाओ जड़े हुए शुहदा और सिद्दीकीन लोग इनके पीछे इन टीलों पे होंगे। अल्लाह अज्जा वजल फरमाएगा मैंने अपना वादा तुमसे सच किया, अब मुझसे जो चाहो मांगो पाओगे। ये सब कहेंगे हमें तेरी खुशी और तेरी रजा चाहिए बस अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाएगा ये तो मैं तुम्हें दे चुका हूं, मैं तुमसे राजी हो गया हूं, इसके सिवा भी जो तुम चाहो पाओगे, और मेरे पास और ज्यादा है, मजीद है। बस ये लोग जुमा के दिन के ख्वाहिशमंद रहेंगे क्योंकि इन्हें बहुत सी नेमतें इस दिन मिलती हैं। यही दिन है जिस दिन तुम्हारा रब अर्श पे मुस्तवी हुआ, इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, और इसी दिन कयामत आएगी। तो अल्लाह ताला का दीदार भी वहां पे उस दिन होगा। जुमे के दिन ये कहा जाता है असर के बाद आदम अलैहिस्सलाम को आखिर में पैदा किया गया, इनसे पहले जमीन और चीजें और हशरात और ये सारी चीजें पहले पैदा कर दी गई। जुमे के दिन की इस घड़ी में ही आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, यानी असर के बाद किसी वक्त। अल्लाह अकबर। और जन्नती वहां पे 70 70 साल तक, एक मुसनद अहमद में आता है कि हदीस के जन्नती 70 साल तक एक ही तरफ बैठा देखता रहेगा। यानी ऐसे ऐसे सीन्स होंगे कि वो, देखिए आप टीवी के आगे बैठते हैं मुझे पता है, पर 1 2 घंटे ऐसे ही गुजर जाते हैं। आप ये इस पे बैठते हैं कंप्यूटर पे, आपने कहीं फेसबुक है कि पता नहीं क्या जो भी चीजें, इन सारों के ऊपर बैठते हैं आप, देखते हैं घंटों का पता ही नहीं चलता। ये तो इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं। आप लोग कभी कभी पूरी पूरी रात रात मूवीज देखते रहते हैं, पूरी रात गुजर जाती, रात का ही नहीं पता चलता। अच्छा फिर अपने प्यारों के साथ बैठते हैं, कहीं दूर से कोई आया हुआ प्यारा, पूरी रात गुजर जाती है, सुबह फजर अजान हो जाती है, पता ही नहीं चलता गपशप में। आपको लगता है कि जन्नत के अंदर बोर हो जाएंगे और क्या वो करेंगे कि आज ही वहां पे हम, यानी आप को अच्छा लगता है कि दुनिया में मुसीबतों में पड़े रहो, यहाँ पे कभी किसी चीज के मसले, कभी किसी चीज के मसले, ये तो बोर नहीं करते, तो वहां पे बोरियत हो जाएगी। 70 70 साल एक एक तरफ देखते रहेंगे, ऐसे ऐसे सीन होंगे। फिर जन्नती के पास एक हूर आएगी जो उसके कंधे पे हाथ रख के उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करेगी। वो इतनी खूबसूरत होगी कि उसके रुखसार से, उसके चीख से उसे अपनी शक्ल इस तरह नजर आएगी जैसे आईने में देख रहा हूं। वो जो जेवरात उसने पहने होंगे उनमें एक अदना मोती ऐसा होगा जिससे सारी दुनिया रोशन हो जाए। वो सलाम करेगी, ये जवाब देगा, पूछेगा तुम कौन हो, वो कहेगी मैं हूं जिसे कुरान में मजीद कहा गया, ये भी एक इसकी तफसीर बताई गई। अल्लाह अकबर। लेकिन ज्यादा राजे यही है कि ये मजीद अल्लाह ताला का दीदार है, तो जिसने अपने आप को इस दुनिया के अंदर बेहयाइयों से जिस मर्द ने बचा के रखा, उसके लिए ये हूर होगी, ये हूरें जन्नत की होंगी। अल्लाह ताला कितना बड़ा उनको इनाम देगा, क्योंकि उनके लिए कितना मुश्किल है अपने आप को यहाँ पे कंट्रोल करना, तो अल्लाह ताला उनके लिए फिर इनाम भी उतना ही बड़ा रखा हुआ। लेकिन वो लोग जो इसका इंतजार करें, वकम अहलकना कबलहुम मिन करने, अब जन्नत और जहन्नुम की बातें मुकम्मल हुई और अब इस सूरत का आखिरी हिस्सा शुरू हो रहा है, जिसके अंदर इस सूरत में जो भी आया है उसके बाद नसीहत की जा रही है। ये भी तुम्हें जन्नत भी बता दी गई, जहन्नुम भी बता दी गई, तुम्हें ये भी बता दिया गया कि कहाँ कहाँ तुम्हें एंड अप होना है और तुमने किन चीजों में अपना वक्त गंवा के और नाफरमानियों में और बेसब्री में पढ़ के यहां एंड अप नहीं होना जो जहन्नम है, तुम्हें गफलत से निकलना है। देखो अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या क्या तैयार किया। काफिर की ये पहचान है कि आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान है कि गुम इसमें आफाक है। सुभान अल्लाह, मोमिन तो ऐसा होता है, तो तुमने यहीं गुम नहीं हो जाना, ये तो काफिर है जो यहीं पे गुम है। तो अब इसके बाद फिर नसीहतें की गई कि देखो कुरैश मक्का को भी कहा गया और पूरी रहती दुनिया तक, कम अहलकना कबलहुम मिन करने, कितने ही हलाक कर दी हमने बस्तियां, हुम अशद्दु मिनहुम बतशन, जो इनसे ज्यादा थी जोर में, फनक्कबू फिल बिलाद, तो उन्होंने चांद मारा मुल्कों को, यानी वो दुनिया में कहाँ कहाँ घूमे, उन्होंने तिजारतें की, उन्होंने कहाँ कहाँ कारोबार किए, उन्होंने कहाँ कहाँ फतूहात की। नकब लगाना होता है ना, यानी कुछ किसी जगह जाके सुराख कर देना, तो ये दुनिया में जगह जगह घूमते रहे, मालूमात हासिल की, दुनिया के मुल्कों को छान माला, हल मिन महीस, फिर उनको कोई जाए पनाह मिली, यानी तुम क्या दुनिया में गुम हो गए और यहाँ पे अल्लाह की नाफरमानियों पे पड़ गए। देखो कितनी ताकतवर कौमें तुमसे ज्यादा ताकतवर थी, उनको क्या मिला, यहाँ की ताकतों ने उनको बचाया नहीं। अगर दुनिया में तुम गुम हो जाते और यहाँ की सारी तरक्की भी हासिल कर लेते हो, तो मतलब यह है कि अल्लाह को भूल के और उसकी नाफरमानी के रास्ते पे चल के तुम दुनिया में सुपर पावर भी बन जाते हो ना, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर जब अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आता है तो कोई छुपने की जगह नहीं मिलती, ये समझ लो। इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा, लेकिन इसमें नसीहत है किसके लिए, लिमन काना लहू कल्ब, जिसके पास दिल हो, दिल ही तो नहीं है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, इनके पास दिल है लेकिन वो वाले दिल है जो समझते नहीं। यहाँ पे कल्ब वो वाला दिल मुराद है जो गौर व फिक्र करे, जो नसीहत को अपने अंदर ले, ये नहीं कि दिल से टकरा टकरा के और जा रही है, ये कान से सुना दूसरे से निकाल दिए, नसीहतें हमें नहीं चाहिए, हमें सब पता है। वो दिल नहीं, वो दिल जो दिल जैसे हम कहते ना, मैंने दिल पे बात ले ली है, तो क्या मतलब होता है कि बात मेरे दिल में चली गई, लग गई मेरे दिल को, तो ये उसके लिए जिसके पास दिल हो, और अलकसम, या फिर वो डाले कान को, यानी अपने दिल से तो कायनात में देख के उसको नहीं कोई समझ आती, तो चलो क्या है किसी की बात ही सुन ले, कोई बता रहा हो उस पे ही गौर से सुन लो, वह हुआ शहीद और वो गवाह। ये ना हो कि, यानी गवाह से मतलब क्या कि हाजिर है दिल, हाजिर हो दिल, जब ही सुन भी रहा है तो दिल हाजिर किया हुआ है। अक्सर क्या होता है, हम बैठे हुए हैं, बात सुनाई जा रही है हमें, लेकिन हमारा दिल हाजिर नहीं है, हम गौर से सुन ही नहीं रहे, हम कहीं और टेक्स्टिंग में मगन है। तो पहला है लहू कल्ब, इसमें नसीहत है, यानी ये तुम देखो कितने उजड़े हुए कारखाने तुम्हें नजर आते हैं, कितनी बस्तियां उनके पास से गुजरते हो, खंडरात बन गई, उनके क्या क्या तमद्दुन थे, कितनी उनकी तरक्कियां थी। मैं देख रही थी पिछले दिनों ये ताजमहल और वो इंडिया के और कई किला, लाल किला शायद इस तरह से, और उनकी मैं डॉक्यूमेंट्रीज देख रही थी, वहां पे वो दिखा रहे थे किस तरह, अल्लाह अकबर, तो वहां पे कितने टूरिस्ट आए हुए घूम रहे थे लोग। तो मैं यही सोच रही थी कि देखो ये जगहें वो थी जिनमें कोई बादशाह जब आते होंगे तो कोई पर नहीं मार सकता होगा। हटो बच्चों के शोर होंगे, कोई उन्होंने बताया ये मलकाएं यहाँ पे होती थी, यहाँ से उनकी जो 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 बेगमात उनकी होती थी मलकाएं वो यहाँ पे बैठती थी और यहाँ पे ये उनके कमरे थे और क्या क्या चीजें बता रहे थे जो मुगल बादशाह थे। तो क्या लोग होंगे वो, और कितने अजीम व शान इन्होंने इमारतें बनाई, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बना के रख दिया ताजमहल, और क्या दरिया पास से गुजर रहे हैं, और क्या आलीशान उनके महल्लात थे। कहाँ चले गए वो सब लोग, किधर छोड़ के चले गए, अल्लाह अकबर। तो इससे पता चलता है हम अपने इर्द गिर्द भी देख लेना तो हमें ऐसी निशानियां मिलती हैं कि जिसके ऊपर हम गौर करें ना, अगर हमारे दिल हूं हम गौर करें तो बहुत सारी नसीहत की बातें मिलती हैं। तो ये दुनिया की तरक्कियां तुम्हें कहीं कामयाबी तक नहीं पहुंचा देंगी, अल्लाह की फरमा बरदारी है जो पहुंचाएगी। अगर तुम अपना दिल इतना नहीं है, तुम्हें गौर व फिक्र करने का पता ही नहीं है, तो सुन ही लो, और वो नसीहत लेगा जो शहीद होगा, यानी जो खुद अटेंटिव होगा। ये नहीं कि दिल कहीं और कान कहीं और, बातें कहीं और की चल रही हो। वलकद खलकना समावाती वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम, और अल्बत्ता तहकीक पैदा किया हमने आसमानों को और जमीनों को और उनके दरमियान जो कुछ भी है 6 दिनों में पैदा कर दिए। फिर अच्छा, अगर तुम्हें इनसे नहीं नसीहत मिल गई, आसमान और जमीन ही देख लो किसने पैदा किया। अल्लाह ताला ने तुम्हें बता दिया कि 6 दिन में पैदा किया, ये मतलब नहीं है कि वो इससे पहले पैदा नहीं कर सकता था और उसको 6 दिन लग गए पैदा करते करते, वो तो चाहे कुन करके पैदा करते, लेकिन उसने 6 दिन में पैदा किया तुम्हें सिखाने के लिए। हर चीज तदरीज के साथ करना अच्छा है, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप करना अच्छा है। यानी माँ के पेट में भी बच्चा अल्लाह चाहे तो एक दिन के अंदर ही बच्चा बड़ा होके और निकल आए, लेकिन वो बच्चा स्टेप बाय स्टेप बनता है। तुम भी अपने कामों को इसी तरह सर अंजाम दो। उलमा कहते हैं इसमें ये हमारे लिए नसीहत है, वरना अल्लाह ताला 6 दिन क्या 6 लम्हों में या 1 लम्हे में पैदा कर देता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छी खसलतें क्या है, आहिस्ता आहिस्ता काम करना, मियाना रवि इख्तियार करना, ये अच्छी खसलतें हैं और नबुवत के 24वें हिस्से में से एक हिस्सा है। ठीक है, अल्लाह ताला को तहम्मुल पसंद है, वो खुद भी उसका नाम है अल हलीम, तहम्मुल वाला, तहम्मुल से काम करने वाला। यानी कि हम जैसे जज्बातीयत से करते हैं, फौरन बस इस वक्त ही सब कुछ खत्म कर दें, सब कुछ ये कर दें, जल्दबाजी के अंदर काम करना, तो हेस्टी होना ये शैतान का काम है। 3 चीजों में बस जल्दी करनी चाहिए, नमाज पढ़ने में, जनाजा ले जाने में, और शोहर दीदा जो औरत है उसका निकाह करने में, यानी जो तलाक याफ्ता या बेवा शोहर से मिली हुई है उसका निकाह करना। तो बाकी उसके अलावा कोई चीज नहीं जिसके ऊपर इतनी तेजी दिखाई जाए कि बस तेजी तेजी में ही देखे हम बार दफा कामों को खराब कर जाते हैं। अमा मस्सना मिन लुगूब, और हमें इसमें कोई थकावट नहीं हुई, यानी कोई लुगूब कहते हैं थकावट मुशक्कत, जैसे हम इतना एक मुशक्कत तो है ना कि हम उठ के जाते हैं और कोई काम करें, मिसाल के तौर अपने लिए खाना ही निकालना है तो एक गए और निकाल के लाए तो एक मुशक्कत हमने की, अल्लाह ताला को जरा बराबर भी कोई मुशक्कत नहीं। ये राद है इसमें यहूद का जो कहते थे अल्लाह ताला ने 6 दिन में आसमान और जमीन को पैदा किया और 7वें दिन उसने आराम किया, ये नहीं। और ये जो 6 दिन है ये हमारे 6 दिन इसलिए नहीं हो सकते कि जमीन तो उस वक्त थी नहीं ना, चांद सूरज थे, ठीक है, तो वो कौन से 6 दिन है हम नहीं जानते। फसबिर अला मा यकूलून, बस आप सबर कीजिए जो ये बातें कहते हैं उनपे, यानी ये तो अल्लाह ताला के बारे में भी जुबाने दराज कर देते हैं कि उसने उस दिन आराम किया, हालांकि वो आराम का मोहताज नहीं है, वो आराम करने से और थकने से पाक है। जब हम कहते हैं ना सुबहान तो हम आगे आ रहा है सभ्य तस्बीह, तस्बीह यही है कि हम अल्लाह ताला को हर एक फ्लॉ से, हर एक कमजोरी से, चाहे वो थकन ही क्यों ना हो, चाहे वो ऊंग ही क्यों ना हो, नींद ही क्यों ना हो, हम उससे भी पाक तर करार देते हैं। औलाद ही क्यों ना हो, जो उसकी चीजें हमारे लिए अच्छी हैं लेकिन अल्लाह ताला उनसे भी पाक है, क्योंकि वो किसी चीज का मोहताज नहीं है। वो थक जाए तो इंसान फिर उसको आराम करने की जरूरत होती है, वो आराम करने से भी पाक है, वो थकने से भी पाक है। थकावट भी एक नक्स है, फ्लॉ है, वीकनेस है, कि कोई थक गया काम कर करके, इतनी बड़े आसमानों को और जमीन को बना के भी वो थका नहीं, तो क्या तुम्हें उठा के दोबारा थक जाएगा? तुम्हें तो उठाना दोबारा क्या मुश्किल काम है? तो ऐ नबी, आप सब्र कीजिए, ये लोग जो आपकी मुखालफतें कर रहे हैं, और हर दाई दीन के लिए कि देखें लोग अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बातें कर देते हैं जो रब्बुल आलमीन है, तो हम क्या चीज हैं? लिहाजा फिर सब्र ही करना चाहिए। वसब्बिह, और तस्बीह कीजिए, बिहम्द रब्बी का, अपने रब की हम्द के साथ। हम्द क्या होती है? तस्बीह और हम्द में क्या फर्क है? तस्बीह अल्लाह ताला को पाक करार देना हर नक्स से, और हम जो भी उसके लायक नहीं है, शान के लायक नहीं। और हम्द क्या है? कि अल्लाह ताला को तमाम आला सिफात, कमाल की सिफात जो है वो उससे मुत्तसिल करार देना, कि अल्लाह ताला के अंदर वो तमाम आला सिफात कामिल दर्जे की हैं, जितनी भी आला सिफात है वो उसके अंदर है। और वैसे तो हम तस्बीह और हम्द अल्लाह ताला की बयान वैसे ही करते करनी चाहिए, करते रहना चाहिए, लेकिन उलमा कहते हैं जब इसके साथ औकात बता दिए जाएं कि इस वक्त में, तो इसका मतलब होता है नमाज। ठीक है, जैसे यहाँ तस्बीह और हम्द है, तो इसका आगे आ गया कबला तुलू शमसी व कबला गुरूब, तो इसका मतलब है कि नमाज, यानी तुलू शम से पहले कौन सी नमाज है? फजर। और कबला गुरूब यानी असर। तो कहा जाता है कि पहले फजर और असर की नमाजें ही थी जो फर्ज थी, मेराज से पहले और रात की तहज्जुद की, और उसके बाद जब आप सरसर मेराज पे गए तो पांचों नमाजें फर्ज हो गई। लेकिन वैसे भी इन नमाजों का बहुत ज्यादा ताकीद का हुक्म है, ये नमाजें बहुत इंपॉर्टेंट नमाजों में से, आप सोचें कुरान करीम में इन्हीं दो नमाजों की कसम भी खाई गई, वल फजर और वल असर, ठीक है ना? तो इन नमाजों का एहतमाम करना और इनको इनके औकात पे पढ़ना बेहद जरूरी है, बल्कि ये कहा गया कि ये जन्नत में ले जाने वाले कामों में से एक काम है, कि जो फजर और असर की नमाजों का एहतमाम करते थे वो उन लोगों के लिए, कि ये जो लोग इन औकात में अल्लाह का जिक्र करते हैं। वैसे भी आप देखिए हमारी जो हिफाजत की दुआएं हैं वो भी हम इन्हीं औकात में पढ़ते हैं, यानी फजर के बाद भी और असर के बाद भी। तो मुस्नद अहमद में है कि सहाबा कहते हैं हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे, आपने चौदहवीं रात की चांद को देखा और फरमाया तुम अपने रब के सामने ऐसे पेश किए जाओगे और उसको इस तरह देखोगे जैसे हम चांद को तुम देख रहे हो। यानी चांद को देखने में आपको देखे कोई धक्कमपेल नहीं होती, कोई ये नहीं कहता अच्छा मुझे पहले देखने दो, कोई ऊंचा होके देख रहा हो, कोई पीछे, जैसे कि कोई सामने स्क्रीन होता है तो उस पे तो क्या होता है आगे वालों को ज्यादा अच्छा नजर आता है, पीछे वाले सर उठा उठा के ऊंचा कर करके देख रहे होते हैं हमें नजर नहीं आ रहा, इसका सर बीच में आ गया, उसका ये रुकावट आ गई, आगे से हटो पीछे को, ऐसी कोई चीज नहीं। जैसे आप चांद को देखते हैं ना, इस तरह अपने रब को तुम देखोगे, जिसके देखने में कोई धक्कमपेली नहीं होगी। बस अगर तुमसे हो सके तो खबरदार सूरज निकलने से पहले की और सूरज डूबने से पहले की नमाजों से गाफिल ना होना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो यानी ये नमाजें इंतहाई इंपॉर्टेंट नमाजें हैं, यानी अगर तुम अल्लाह ताला का दीदार करना चाहते हो तो इन नमाजों की जरूर हिफाजत करना। और फिर वैसे भी आपको पता है कि इन नमाजों में अल्लाह ताला की तस्बीह करनी चाहिए और ये अज़कार करने चाहिए जो हिफाजत के हमारे लिए हैं, जो सुबह शाम के हैं, यानी नमाज के बाद भी। वमिनल लैली फसब्बिहु वअदबार सुजूद, और रात में भी तस्बीह करो, यानी तहज्जुद की नमाज के, और वो उस वक्त थी लेकिन अब मगरिब और इशा की नमाजों की तरफ इशारा है। और अदबार सुजूद सजदे के पीछे, सजदों के पीछे, सजदे से मुराद यहाँ पे नमाज है, क्योंकि सजदा नमाज का रुकन है। जैसे है ना वरकाउ मार राकईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, तो मतलब क्या होता है नमाज पढ़ो, इसी तरह यहाँ पे सजदा कह के नमाज मुराद है। तो सजदा के पीछे यानी नमाज के बाद के औका अजकार जो है, आपको पता है नमाज के बाद हम अजकार करते हैं 33 दफा सुभान अल्लाह, 33, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 33 टाइम्स अल्लाह अकबर, फिर आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू शरीक लहू, वो वाला करके हम 100 इसको पूरा करते हैं। तो ये उसी वक्त मुसल्ले से उठ के भागना नहीं चाहिए। अक्सर देखा गया कि मस्जिदों के अंदर इधर सलाम फेरते इमाम साहब, उधर लोग भागना शुरू होते हैं, और उससे भी ऑन टॉप ऑफ दैट कि कोई एक माइक पकड़ के खड़ा हो जाता है और किसी को मतलब सुकून के साथ अजकार नहीं करने देते। हालांकि ये देखें, इनका जिक्र यहाँ पे आया है कि सजदों के पीछे भी करो, नमाज के बाद भी तस्बीह किया करो, और इसमें फर्ज नमाज के बाद के अजकार की तरफ भी इशारा है, और दूसरा इशारा है जो सुन्नतें हैं, जो खास तौर पे जो 12 सुन्नतें हैं दिन भर की, उनको अदा करने की तरफ इशारा है, जो हमारे लिए मतलब एक्स्ट्रा है, नवाफिल की तरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बहुत एहतमाम किया करते थे, और उसके अलावा भी आप नवाफिल अदा कर सकते हैं। तो फर्ज नमाज के बाद भी फौरन ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि सुन्नतों का एहतमाम भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये बात आ गई है। हाँ, वो फर्ज नहीं है, लेकिन उनकी बहुत फजीलत है। जैसे जो 12 रकात एक दिन में पढ़ता है, तो वो अपने लिए जन्नत में एक महल तामीर कर लेता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की नमाज का भी फरमाया, व मिनल लैली फसब्बहु, जो मगरिब और इशा की नमाजें हैं उनका भी पता चलता है, और तहज्जुद का भी पता चलता है। और आपको पता है ना कि जो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल होना चाहता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम बताए थे उनमें रात का कयाम करना एक काम था, सलाम फैलाना भी था, अच्छी गुफ्तगू करना भी, सिला रहमी करना भी, ये सब सलामती के साथ अगर आपने जन्नत में जाना है तो ये 4 काम करने होंगे जिनमें रात का कयाम है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमने नमाजों की हिफाजत करनी है, और ये भी हमें पता चलता है कि हमने अजकार करने हैं। और आपको पता है कि ये अजकार खास तौर पे, ये जो 33 टाइम्स वाले हैं, ये जो इंसान करता है तो उसके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर भी हो तो माफ हो जाते हैं। तो इनसे भागा ना करें, और सुन्नतों का एहतमाम कम अज कम इन 12 सुन्नतों का जरूर करें। वस्तमय मतलब, और कान लगा के सुनो, असल में यहाँ पे मुराद क्या है, इंतजार करो। और अगर कान लगा के सुनने का भी माना ले तो भी ठीक है, लेकिन इंतजार करो किस चीज का, यौम युनादिल मुनादी बिन मकान करीब, जिस दिन निदा देने वाला निदा देगा करीब की जगह से, उस दिन का इंतजार करो। अगर ये ऐसे नहीं बाज आते तो देखो कि वो एक दिन आने वाला है जिस दिन जो करीब से ही निदा देने वाला निदा देगा, पुकारने वाला पुकारेगा, यानी कि ऐसा लगेगा हर एक को कि मेरे पास खड़ा होके कोई पुकार रहा है, मेरे करीब है कोई, जब सूर फूंका जाएगा तो ऐसी उसकी आवाज होगी। यौमा यस्माउन अस्सैहता बिल हक, जिस दिन सुनेंगे चीख को हक के साथ, ज़ालिका यौमुल खुरूज, ये है निकलने का दिन, यानी कयामत के दिन की वो चीख होगी जो कब्रों से निकलने का दिन है। और ये चीख सुन के ही सबको एकदम वेकअप हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा कि झुंझोड़ना पड़े। अब दुनिया में किसी को आप जगाना हो तो कितना मुश्किल होता है, वो जागते ही नहीं भाई हम सोए में, लेकिन कब्रों में पड़े हुए मुर्दे भी जाग पड़ेंगे। मौत भी हक के साथ आई थी ना, मौत का भी हक के साथ कहा गया, और ये भी हक के साथ आएगी, यानी सब हकीकत सामने खुल जाएगी, सच सामने आ जाएगा, जिसका इनकार करते थे वो सामने आ गया। तो जिस दिन वो सूर की आवाज सुनेंगे तो ये हक को के साथ आएगी, और ये निकलने का दिन होगा। इन्ना नहनु नुहयी व नुमीतु व इलैनल मसीर, बेशक हम ही हैं, हम ही ने जिंदा किया और हम ही हैं जो मौत देते हैं, और हमारी ही तरफ पलट के आना है, यानी इस चीज को भूल ना जाना कि हमारी तरफ तुम्हें लौटना है, हमारी तरफ तुम्हें पलटना है। अल्लाह ताला ने फरमाया, गए भी हमारी तरफ से थे, आना भी हमारे ही पास है। यौम तशक्कुकुल अर्दु अनहुम सिराअन, जिस दिन जमीन फट जाएगी इनके ऊपर से तेजी करते हुए, सूरत के साथ यानी जमीन फटेगी तो ये तेजी से निकलेंगे उसके अंदर से, कोई देर नहीं लगाएगा, कोई ये नहीं कहेगा अभी नहीं मैंने उठना, 10 मिनट बाद उठूंगा। जालिका हश्र अलैना यसीर, ये हशर करना हमारे लिए बहुत आसान है, तेजी से सब दौड़ेंगे, हर इंसान की कयामत शुरू हो गई, अब शुरू हो गई हर इंसान की। वाइजल कबूरु बासीरत, कब्रें खुलेंगी और दौड़े जाएंगे वो कब्रें भी जो पुरानी हो चुकी थी, और कैसे उठेंगे, नंगे पांव नंगे बदन और बगैर खतने के, और कितनी दुनिया होगी कितनी खलकत होगी, इमेजिन करें कितने इंसान हैं। अल्लाह अकबर, इसीलिए कहा गया ना ऐसे होंगे जैसे मुंतशिर पतंगे, पतंगे ऐसे गड़मड़ हो जाते ना, इतनी मखलूक होगी वो सब एक हशर के मैदान की तरफ जा रहे हैं, मजाल है कि कोई इधर से उधर हो जाए। अल्लाह तआला ने फरमाया ये हमारे लिए बहुत आसान, जो हर शहर पे कादर है उसके लिए क्या मुश्किल है, ये इंसान है जो बेबस है। इस दिन की तैयारी करने की दावत है। अब समझ आती है क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरह को पढ़ा करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स का मकसद और उसकी हिर्स दुनिया हो ना, और वही उसका मकसद बन जाए और उसी की नियत करता हो, तो अल्लाह ताला उसकी आंखों के सामने उसका फकर कर देता है, यानी उसको हर वक्त ये फिक्र रहती है कि खाऊंगा कहाँ से, क्या करूंगा, कल के लिए सेविंग नहीं है, हम कैसे अपना बुढ़ापा गुजारेंगे, हम कैसे कल का दिन गुजारेंगे, जॉब ना चली जाए वो ना हो जाए, बस वो इसी फिक्र में रहता है, अल्लाह ताला उसके सामने उसका फकर कर देता है और उसके ऊपर उसके मामलात बिखेर देता है, और उसको मिलता उतना ही है जितना उसके लिए लिख दिया गया होता। और जिस शख्स का मकसद और उसकी हेर साखरत हो जाए, और वही उसका हदफ हो, उसका एम हो, उसका एम इन लाइफ हो, गोल हो, और वो उसकी नियत रखता हो, तो अल्लाह ताला उसके दिल को गनी कर देता है, बेपरवाह कर देता है, यानी उसके मामलात को यकजा कर देता है, इकट्ठा कर देता है, बिखेरता नहीं है, और दुनिया उसके पास जलील होके आती है, दुनिया तो फिर भी आ जाएगी, और जलील करके अल्लाह ताला उसको लेकर आएगा, वो खुद ही भागी आई। लेकिन अगर इंसान ने नियत आखरत की होगी, नानु आलमु बिमा यकुलून वमा अंत अलैहिम बिजब्बार, अल्लाह ताला फरमाते हमें अच्छी तरह पता है, आलमु मुबालगा है इसमें ना, हम ज्यादा जानते हैं, हमें अच्छी तरह पता है जो ये कहते हैं, लेकिन आप इनके ऊपर कोई जब्बार बन के नहीं मुसल्लत किए गए। तदक्किर इन्नका अंता मुदक्किर, आप सिर्फ नसीहत करने वाले, पहुंचा देने वाले, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप इनके पर दारोगा तो नहीं, तो आपको कोई जबरदस्ती इनको नहीं लेकर आना, इसीलिए आपसे सर हमने फरमाया मैं तो सिर्फ पैगाम पहुंचाने वाला हूँ और हिदायत देने वाला तो अल्लाह है। आपने फरमाया मैं तुम्हें एक ऐसी शाहराह पे छोड़ के जा रहा हूँ जो रोशन है, जिसकी रात भी दिन की तरह, सब चीजें पहुंचा दी, सब बता दिया, लेकिन उसके बाद कोई जबरदस्ती नहीं किसी के ऊपर, आओगे इस तरफ तो अपना भला करोगे, नहीं आओगे तो अपने लिए बुरा करोगे, जबरदस्ती लेकर आना ही नहीं, ये झूठ है जो कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला, तलवारें रख रख के पता नहीं लोगों के गलों पे और उनको मुसलमान करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं, हमारा तो दीन कहता है कि नहीं आपने मुसलमान करने के लिए किसी को जबरदस्ती नहीं करनी। फदक्किर बिल कुरान, बस आप नसीहत करते रहे कुरान के साथ, मैं ये खौफ वाईद, जो डरता है मेरी वाईद से, जो अल्लाह के अजाबों से डरता होगा ना वो जरूर नसीहत पकड़ेगा, इस कुरान के जरिए नसीहत करते रहे, नहीं नसीहत फायदा किसको देगी, उसी बंदे को जो डरने वाला होगा अल्लाह के वादों से अजाबों से। तो टूल क्या है, कुरान, तबलीग करनी किसके लिए, किस के साथ है, कुरान के साथ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा का जितना काम किया कुरान के साथ ही तो किया, ऐसी तकरीरें कर करके नहीं किया, कुरान के साथ किया, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो है सबसे इंसानों में सबसे बेहतरीन बात है, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज को इस्तेमाल करते थे, कुरान को, और वाकई कुरान ही बेहतरीन याद दहानी है, नसीहत के लिए बेहतरीन है, कुरान ही लोगों को सुना दे, कुरान लोगों को बता दे, इसके साथ लोगों को जोड़ दे, खुद ही ठीक हो जाएंगे, खुद ही नसीहत पकड़ लेंगे, अगर उनके दिल में वाकई अल्लाह के अजाबों का खौफ होगा तो। फिर कोई चीज उनको तीसरी बताने की जरूरत नहीं। जिंदगियां बदलनी होगी तो ये कुरान के जरिए ही हो सकता है। नसीहत पकड़ेगा कोई तो कुरान के जरिए, और जिसके ऊपर कुरान ना असर करे तो उसका मतलब उसका दिल बेखौफ हो चुका है, फिर उसके ऊपर कोई बात असर और नहीं करेगी। तो बहुत हिला देने वाली सूरा, बहुत इंसान के लिए नसीहत आमेज सूरा। अल्लाह ताला इस सूरत को हमें सही समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और कोशिश के साथ हम इसको याद करें और इसको फिर बार बार दोहराते रहें, ताकि ये नसीहत का पैगाम सिर्फ आज के लिए ना हो, बल्कि मुसलसल याद दहानी से हमारे जहन में बैठ जाए। कहीं हम गुम होने लगे इधर उधर तो फिर याद आ जाए। तिलावत सुनिए।
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.